सच का खुलासा पार्ट वन। क्योंकि आस्था सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अपनी मोहब्बत, अपने पति के मुंह से इस तरह की जहरीली बातें भला वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। आस्था के कानों में ये शब्द किसी हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में वो करे तो करे क्या अब आगे। वहीं नानी माँ भी अरमान के मुंह से इस तरह की घटिया बातें सुनकर अगले ही पल गुस्से से भर उठी थीं। वो तुरंत उसे उंगली दिखाते हुए बोली, बस कीजिए दामाद जी, आप इस तरह से हमारी नरमी का फायदा नहीं उठा सकते हैं। और अगर आप गोली मारना ही चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले हमें गोली मारकर अपनी इच्छा पूरी कर लीजिए, लेकिन हम हमारी गोरी बिटिया के खिलाफ इस तरह की घटिया और जहरीली बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी गोरी बिटिया ऐसी नहीं है, भले ही आपकी याददाश्त चली गई हो, लेकिन वो आप ही थे जो हमारी गोरी को बेतहाशा चाहते थे। अरे हमारी गोरी के बिना तो आप पानी तक पीने नहीं जाते थे, इतना प्यार करते थे आप हमारी गोरी बिटिया से। अब आपकी यादें किसी ने छीन ली हैं तो इसमें हमारी बिटिया क्या गलती है, इसके लिए आप हमारी गोरी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते, समझे आप। अब जैसे ही नानी माँ ने एकदम ऊंची आवाज में अरमान को फटकारा तो वैसे ही अरमान तुरंत ही उठकर नानी माँ के करीब चला गया और एकदम से अपनी गर्दन तिरछी करके नानी माँ की ओर देखते हुए अपने होठों पर हाथ रखकर गहरी और कड़क आवाज में बोला, शांत हो जाओ ओल्ड लेडी, शांत हो जाओ। अरमान सिंघानिया को ऊंची आवाज बिल्कुल पसंद नहीं है। अरमान ने जैसे ही ठंडी आवाज में ये कहा तो वैसे ही नानी माँ को ऐसा लगने लगा मानो उनकी पूरी रीढ़ की हड्डी में सिराहन दौड़ गई हो, जैसे किसी ने उनके शरीर से आत्मा को निकालकर बाहर खड़ा कर दिया हो। उनका शरीर एक पल के लिए अकड़ गया, उनके कदम डगमगाए और नानी माँ का चेहरा एकदम ठिठक गया। वहीं आस्था, जिसे इस वक्त रश्मि, वंशिका, साथ ही साथ राधिका, रौनक संभाल रहे थे, उस समय उसको ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि उसका पूरा शरीर जहां था वहां जमसा गया हो। उसके चेहरे पर अजीब सा गुस्सा और दर्द था। आस्था को इस तरह तड़पता हुआ देखकर दादाजी ने आह भरी और अगले ही पल भारी मन से अरमान के सामने जाकर खड़े हो गए और अपनी दर्द भरी आंखों में आंसू लिए अरमान से बोले, अगर तुझे गोली मारनी है ना तो मुझे मार, क्योंकि मैंने ही तेरी शादी इस बच्ची से करवाई थी जिसकी जिंदगी तेरी वजह से बर्बाद हुई है। लेकिन ये सच है, तूने आस्था बिटिया को इतना चाहा था कि तुम्हें इसकी आंखों में इतना सा भी दर्द दिखाई देता था तो तू इस दुनिया को आग लगाने के लिए तैयार हो जाता था, और अब तुम्हें इससे नफरत हो रही है, अब तुम्हें ये लड़की गुनाहगार लग रही है, जालसाज लग रही है। फिर दादाजी ने अपने आंसुओं को साफ किया। फैमिली का हेड होने के नाते वो उदासी में नहीं डूब सकते थे। अचानक दादाजी के दिमाग में एक बात आई और उन्होंने नाराजगी से आईब्रो सिकोड़कर अरमान से पूछा, अगर तुझे ये बात पता चल चुकी है कि आस्था तुम्हारी बीवी है और अंश तुम्हारा बच्चा है तो फिर तू इस तरह की हरकत क्यों कर रहा है, ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों बोल रहा है, सीधे तरीके से अपने बीवी बच्चे को खुशी खुशी अपना क्यों नहीं लेता। तभी अरमान दादाजी को देखकर सवालिया नजरों से घूरते हुए बोला, दादाजी आप चाहते हैं कि मैं अपने दिमाग पर जोर डालकर ये याद करने की कोशिश करूं कि मैंने इस लड़की से कब शादी की और इस लड़की के साथ मेरा बच्चा कब पैदा हुआ? आप ये चाहते हैं कि मैं ये बातें अपने दिमाग पर जोर देकर याद करूं ताकि मेरा ब्रेन पूरी तरह डैमेज हो जाए? अरमान सिंघानिया इतना भी बेवकूफ़ नहीं है कि वो इस तरह से अपनी जान को रिस्क में डालेगा। अरमान सिंघानिया को अपना अच्छा बुरा अच्छी तरह से पता है दादाजी, और मैंने कहा ना, ये बच्चा मेरा है तो मैं इसे अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, लेकिन इस लड़की से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अरमाना बंश को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार था क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही उसे लैपटॉप पर जो नोटिफिकेशन मिला था वो कुछ और नहीं बल्कि उसका और अंश का डीएनए टेस्ट रिपोर्ट था, जो कि अरमान ने ही सीक्रेटली करवाया था। उस रिपोर्ट से साफ साफ साबित हो चुका था कि अंश अरमान सिंघानिया का ही बेटा है। फिलहाल उसने एक गहरी सांस ली और नजरें उठाकर दादाजी की ओर शांति से देखा, फिर धीरे से बोला, एक और बात, आपने इस घर में कुछ नौकर पाल रखे हैं ना? अब जैसे अरमान ने इनडायरेक्टली वसुंधरा और वीर के बारे में बात की तो वैसे ही अभिमान जी के भी कान खड़े हो गए थे। अभिमान जी की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अरमान के सामने आकर कुछ एक्सप्लेन कर सके, कुछ पूछ सके। वो तो सिर्फ ये सारा तमाशा अपनी बेबस आंखों से देख रहे थे। लेकिन उस सवाल ने दादाजी को एक पल के लिए हैरान कर दिया और वो पूरी तरह से चौंक गए। अगले ही पल वो अपने एक्सप्रेशन बदलते हुए उससे बोले, अच्छा तो अब तू उन्हें नौकर कह रहा है, शायद तू भूल रहा है कि आज तूने अपनी उस नौकर माँ को गले से लगाया था, तो अब तू उन्हें नौकर कैसे कह सकता है? हाँ, आखिरकार तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? जब अरमान ने दादाजी का सवाल सुना तो वो एक पल के लिए थोड़ा हैरान रह गया और अचानक वो जोरों से हंसने लगा। अब अरमान को इस तरह बेपरवाही से हंसते हुए देखकर कहीं ना कहीं सभी के दिमाग में सवालों का तूफान उमड़ रहा था। अचानक उन्हें अपने आसपास ठंड का एहसास हुआ, क्योंकि नॉर्मली लोग हंसते तो सामने वाले को भी हंसी आ जाती है, लेकिन अरमान का हंसना तो दूसरों को पूरी तरह से डरा देने के लिए काफी था। अरमान की आंखों की बेरुखी देखकर कोई भी कह सकता था कि ये तूफान से पहले की शांति है। फिलहाल अरमान को हंसते हुए देखकर सब लोगों का मन उलझन से भर चुका था। तभी अरमान ने तुरंत एक गार्ड्स को कुछ इशारा किया।
वो गार्ड जल्दी ही वसुंधरा और वीर को वहां लेकर आते हैं। वहीं वसुंधरा मुस्कुराते हुए अरमान के सामने आई और अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट लाते हुए उससे बोली, अरे बेटा तुम उठ गए, अब तुम कैसे हो, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है। कहीं ना कहीं उसकी बनावटी आवाज सबके कानों में चुभ रही थी। जैसे ही वसुंधरा ने शहद से डूबी आवाज में ये कहा, तो वैसे ही अचानक अरमान ने अपना हाथ आगे की ओर बढ़ा दिया और उसे कुछ भी कहने से रोक दिया। फिर उसने वसुंधरा को घूरते हुए इरिटेटिंग आवाज में जवाब दिया, अगर तुम दोनों माँ बेटे का ड्रामा खत्म हो गया हो तो अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से, और हाँ आइंदा से सिंघानिया मेंशन के आसपास भी मत भटकना। अरमान की आवाज में धमकी साफ साफ झलक रही थी। अब जैसे ही अरमान ने कोल्ड वॉइस में उन दोनों को ऑर्डर दिया, तो वैसे ही वसुंधरा और वीर एक दूसरे को हैरानी और आश्चर्य भरी नजरों से देखने लगे, क्योंकि उन दोनों ने सोचा नहीं था कि अरमान अचानक से उन्हें सिंघानिया मेंशन से जाने के लिए बोल देगा। अब ये बात सुनकर वसुंधरा का मूड खराब हो गया। उसने अपना मन कठोर करते हुए अरमान को जवाब दिया, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम, हम भला यहाँ से क्यों जाएंगे, हम अब यही रहेंगे, यही हमारा घर है। वसुंधरा के मुंह से घर शब्द सुनकर अरमान बेरुखी से मुस्कुराया और बोला, अगर अपनी जान प्यारी है तो अभी और इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। ये कहते हुए अरमान ने बंदूक निकालकर वसुंधरा के माथे पर लगा दी थी। अब जैसे ही अरमान ने कड़वाहट से ये बोला, तो वैसे ही वसुंधरा अरमान के एक्सप्रेशन देखकर एकदम से ठिठक गई थी। वहीं वीर थोड़ा सा तेज में आकर भड़क उठा, मिस्टर अरमान सिंघानिया तुम इस तरह से मेरी माँ पर हमला नहीं कर सकते, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर मेरी माँ का बाल भी बांका हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वीर की इतनी ऊंची आवाज सुनकर और उसे बदतमीजी करते हुए देखकर सभी लोगों के चेहरे पर हल्की झुंझलाहट उभर आई। वहीं आस्था तो कुछ भी सोचने समझने की सिचुएशन में नहीं थी, वो केवल खाली खाली नजरों से अरमान की तरफ एकटक देख रही थी।
वो चाहकर भी अरमान से कुछ नहीं कह पा रही थी, क्योंकि वो कुछ भी कहकर अरमान की जान का रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए आस्था सारी सिचुएशन चुप रहकर खामोशी से देख रही थी। फिलहाल अभिमान जी तुरंत आगे आए और वीर को चेतावनी भरी नजरों से देखते हुए बोले, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से अरमान से बात करने की। अभिमान जी के शब्द सुनकर वीर का शरीर क्रोध से भर उठा था। वो अभिमान जी की वार्निंग को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए इरिटेट होकर बोला, ओ डैड कम ऑन, एक तो आपने मुझे इस घर का बेटा बनाने की जगह इस घर का नौकर बना दिया है, और ऊपर से आप मुझसे ये उम्मीद रखते हैं कि मैं अपने बड़े भाई से प्यार मोहब्बत से बात करूं? नो वे, और वैसे भी अब सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुकी है, अब हमारा इस घर से जाने का कोई इरादा नहीं है, और अगर इस घर से अब कोई जाएगा तो आप लोग जाएंगे। ये कहकर अचानक वीर ने अभिमान जी को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। अब जैसे वीर ने ये कहा तो नानी माँ और बाकी सबकी तो आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई थी। उसके इन शब्दों ने वहां के माहौल को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया था। वीर के ये शब्द दादाजी का गुस्सा भड़काने के लिए काफी थे। दादाजी तुरंत गुस्से से आगे आए और चिल्लाकर बोले, आखिर यहाँ हो क्या रहा है। फिर वो नाराज नजरों से वसुंधरा को देखकर अगले ही पल बोले, ये तेरा बेटा क्या बकवास किए जा रहा है। ये कहते हुए दादाजी की आईब्रो हल्की सी तन गई थी। तभी वसुंधरा अपने नकली आंसुओं को पोंछते हुए तुरंत ही तंज भरे अंदाज में अरमान के गोल गोल चक्कर लगाते हुए बोलती है, तुम लोगों को क्या लगता है, हाँ तुम लोग मुझे नौकर बनाकर रखोगे, वो भी वसुंधरा को। तुम लोगों ने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम इस तरह से मुझे अपनी उंगलियों पर नचा सकते हो। मेरा नाम वसुंधरा है वसुंधरा, क्या तुम ये बात भूल गए हो। उसके शब्द सुनकर आस्था को थोड़ी झुंझलाहट महसूस हुई, लेकिन वो चुप रही। वहीं नानी माँ के लिए अब रुके रहना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका था। वो तुरंत वसुंधरा के सामने आकर अपनी भड़ास निकालने लगी, अरे तू कितनी घटिया औरत है, और ये किस तरह से बात कर रही है तू, और क्या बोलने की कोशिश कर रही है तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दामाद जी से इस तरह से बात करने की। वसुंधरा का ये दोगलापन देखकर कहीं ना कहीं नानी माँ आस्था के दुख को भूल चुकी थी। वसुंधरा को नानी माँ का इस तरह से बीच में टोकना कुछ खास पसंद नहीं आया और वो तुरंत ही नानी पर बरस पड़ी, ए बुढ़िया तू चुप कर, जब देखो बीच में पटर पटर करती रहती है, हाँ क्या कुछ नहीं किया तूने मेरे साथ, एक तो तूने मुझे उस रौनक का नौकर बनाकर रख दिया, अगर वो प्रेग्नेंट है वो माँ बनने वाली है तो तुझे क्या, उसके लिए मैं ही खाना बनाने के लिए दिखती हूँ, हाँ जब देखो कोई ना कोई काम मुझी से ही करवाया जा रहा है, करवाया जा रहा है, किसी को इस बात का भी तरस नहीं आता कि मैं भी अब धीरे धीरे बूढ़ी हो रही हूँ, तुम लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, यहाँ सबको पता है कि मैं इस अरमान सिंघानिया की माँ हूँ, उसके बाद भी तुम लोगों ने मुझ पर रहम नहीं किया और मुझसे सारे घर का काम करवाया, इतना ही नहीं उस रघुवंशी मेंशन को भी मुझसे साफ करवाया गया, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, तुम लोगों को क्या लगा हाँ मैं इसी तरह से जिंदगी भर तुम लोगों की गुलामी करती रहूंगी, तुम लोगों की नौकरी करती रहूंगी, ऐसा कभी नहीं होगा, मेरा नाम वसुंधरा है और वसुंधरा ने कभी भी इस तरह से किसी के रहमोकरम रहना तो सीखा ही नहीं है,
एक और बात कान खोलकर सुन लो, अब मैं तुम लोगों को यहाँ एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, तो तुम सब अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से, क्योंकि अब ये सिंघानिया मेंशन मेरा हो चुका है और अरमान सिंघानिया ने खुद इसे मेरे नाम पर कर दिया है। अब जैसे ही वसुंधरा ने गोल गोल घूमते हुए सबको आंख मटका मटका कर इस तरह की बातें सुनाई तो सबका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया था। सबके दिमाग में उलझने बढ़ती चली जा रही थी। वहीं ध्रुव और आहान तो एक दूसरे की ओर चिंतित होकर देखने लगते हैं। उन्हें तो समझ ही नहीं आया कि वसुंधरा इस बीच क्या बकवास कर रही है। कहां तो वो लोग अभी इस वक्त आस्था को दिलासा देना चाहते थे और जो आज इतना सारा ड्रामा हुआ था उसे फेस करना चाहते थे, लेकिन यहां तो सारी सिचुएशन ही बदली बदली नजर आ रही थी। वसुंधरा उन्हें घर से जाने के लिए कह रही थी तो ये बात वो कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। आकाश, सुमित, ध्रुव और आहान तुरंत आगे आए और वसुंधरा को देखते हुए नाराजगी से बोले, ये आप क्या बकवास कर रही है, ऐसा भला कैसे हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, अरमान कभी भी अपनी पूरी जायदाद तुम्हारे नाम नहीं कर सकता है। तभी अचानक वसुंधरा ने वीर को आईब्रो मटकाते हुए कुछ इशारा किया। वीर ने जल्दी ही ब्लू कवर में लिपटे हुए कुछ कागजात सबके सामने लहरा दिए थे। वो कागज पढ़कर तो सबका दिमाग फटने के लिए तैयार था, क्योंकि उस पर साफ साफ अरमान सिंघानिया के दस्तखत मौजूद थे। ये सब देखते ही अभिमान जी के सीने में गुस्सा भड़क उठा। वो तुरंत वसुंधरा के पास आए और उसके बालों को खींचते हुए बोले, तू इतनी घटिया चाल चलेगी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे, तुझ पर तरस खाकर हमने तुझे यहाँ रहने की इजाजत दी थी सिर्फ इसलिए क्योंकि तूने बताया था कि वीर मेरा बेटा है, लेकिन तूने घटियापन की हद एक बार फिर से पार कर दी। तू ऐसा कैसे कर सकती है, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर अभिमान जी जल्दी ही वसुंधरा का गला दबाने लगते हैं, लेकिन वीर तुरंत आकर अपनी माँ को बचाने की कोशिश करने लगता है और दादाजी भी अब थोड़ा सा आगे बढ़कर अभिमान जी को रोकने लगते हैं, क्योंकि वसुंधरा की आंखें पूरी तरह से बाहर निकलने को तैयार थीं। आगे क्या होगा इस कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए ऑब्सेस्ड बिलियनेयर हबी, सिर्फ मान्या पर।